लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि एशिया के लोग सुसमाचार का साक्ष्य देते हुए अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ वार्ता, शांति और परस्पर समझदारी को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओ, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं एवं अड़चनों को जीवन से दूर रखें। फिर भी तूने अपने अभिषिक्त को त्यागा, उसे अपमानित होने दिया और उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। तूने उसके शत्रुओं का बाहुबल बढ़ा दिया, तूने उसके विरोधियों को आनंद प्रदान किया, तूने उसकी तलवार की धार भोतरी कर दी, तूने उसे संग्राम में नहीं संभाला। श्रोताओ, ये था स्तोत्र ग्रंथ के 89वें भजन का 39वां, 43वां और 44वां पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस तथ्य पर हम दृष्टिपात कर चुके हैं कि 89वां भजन गहन निराशा के क्षणों में रचा गया भजन है। इस भजन के पहले भाग में भजनकार दुख कष्टों के बावजूद प्रभु ईश्वर का गुणगान करता है, जबकि 39वें पद के बाद से दाऊद के वंश पर आच्छादित गहन निराशा और हताशा से थक कर शिकायतों का सिलसिला आरंभ कर देता है। वह रोता है, वह विलाप करता है और प्रभु ईश्वर को उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाता है। वस्तुतः 89वें भजन के 39 से लेकर 44 तक के पदों में एक प्रकार से भजनकार ईश राज्य की स्थापना में आने वाली बाधाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। इस तथ्य पर हम गौर कर चुके हैं कि बाइबल आचार्यों के अनुसार 89वें भजन के ये पद उस समय लिखे गए होंगे जब दाऊद का घराना घोर संकट से गुजर रहा था। ईश्वर की संहिता का पालन करने और ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता में दृढ़ विश्वास के बावजूद धर्मी पुरुष अपने दुख का बोझ उठाने में असमर्थ से हो गए थे। भजन का रचयिता रो पड़ता है और शिकायत करने लग जाता है। ऐसा संभव है कि यह पुकार हताशा के उस क्षण में भजनकार ने लगाई होगी जब अबसालोम के षड्यंत्र के कारण दाऊद के वंश को उत्पीड़ित किया गया था। दाऊद वंशियों की व्यथा का वर्णन कर भजनकार ने ईश्वर द्वारा भेजे गए मसीह की व्यथा की भविष्यवाणी की है, जिनके दुखभोग, क्रूसमरण और पुनरुत्थान ने मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाई और सदा सर्वदा के लिए अनंत जीवन के द्वार खोल दिए।
Sunday.
आगे 89वें भजन के 45 से लेकर 49 तक के पदों में भजनकार ईश्वर से शिकायत करते हुए कहता है, तूने उसका वैभव छीन लिया और उसका सिंहासन भूमि पर उलट दिया। तूने उसके यौवन के दिन घटाए और उसे कलंकित होने दिया। और इसके बाद प्रश्न कर उठता है, प्रभु कब तक? क्या तू सदा के लिए छिप गया? क्या तेरा क्रोध आग की तरह जलता रहेगा? याद कर कि कितना अल्पकालीन है मेरा जीवन, कितने नश्वर हैं तेरे बनाए हुए मनुष्य। ऐसा कौन मनुष्य है जो तेरी मृत्यु देखे बिना जीवित रहेगा, जो अधोलोक से अपने प्राण छुड़ा सकेगा? प्रभु को संबोधित कर भजनकार कहता है कि प्रभु ने दाऊद का वैभव छीन लिया और अपनी संविदा को भुला दिया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्राचीन व्यवस्थान में निहित शोक गीत ग्रंथ के दूसरे गीत में लिखा है, प्रभु ने अपने पवित्र स्थान को अस्वीकार कर दिया, प्रभु ने अपने भवनों की दीवारों को शत्रुओं के सिपुर्द कर दिया। श्रोताओं, वस्तुतः प्रभु ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूले थे, किंतु जिन परिस्थितियों से उस समय लोग गुजर रहे थे वह इतनी भयंकर और इतनी असहनीय थी कि उनकी प्रार्थनाओं में उनकी आहें निकलती थीं तथा उनके रुदन और विलाप की सिसकियां सुनाई पड़ती थी। जो कुछ हो रहा था, जो भी कष्ट और विपत्तियां उनके समक्ष आ रही थी, उन सब के लिए वे ईश्वर को ही जिम्मेदार मानने लग गए थे। गौर करें कि हम भी जब बात बिगड़ जाती है तो उसका जिम्मेदार ईश्वर को ही मानते हैं, जबकि जो कुछ हमारे साथ होता है वह सब हमारे अपने निर्णयों और हमारे अपने विकल्पों का परिणाम होता है। आगे 47 से लेकर 49 तक के पदों में भजनकार अपनी याचना में प्रभु ईश्वर से प्रश्न कर उठता है कि कब तक प्रभु उसकी सुधि नहीं लेंगे, कब तक उसके दुखों का सिलसिला चलता रहेगा और वह उत्पीड़ित होता रहेगा। भजनकार इस विचार को सह नहीं पा रहा था कि उसका संकट बहुत लंबे समय तक चलता चला जाएगा, इसीलिए रो रो कर पुकारता है, मानो उस ईश्वर को पुकार रहा हो जो छिप गया था और मानो इज़राइल और उसके राजा से नाराज हो गया था। वह याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन कितना अल्पकालीन है और यदि यह जीवन दुख कष्टों में ही व्यतीत हो जाएगा तो वह ईश्वर की महिमा को कैसे जान पाएगा। सच तो यह है कि वह जीवन की क्षण भंगुरता और निरर्थकता, समय की कमी और तात्कालिकता की याद दिलाता है और ईश्वर से अनुरोध करता है कि प्रभु उसकी प्रार्थना तुरंत सुने और उसे उसके शत्रुओं के हाथों से छुड़ाएं, अन्यथा उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। 89वें भजन के 49वें पद में भजनकार कहता है, ऐसा कौन मनुष्य है जो तेरी मृत्यु देखे बिना जीवित रहेगा, जो अधोलोक से अपने प्राण छुड़ा सकेगा। श्रोताओ, सच ही तो है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, किसी के पास वह शक्ति नहीं है जो अपने जीवन को मृत्यु और कब्र से बचा ले। हम मनुष्य प्रायः भूल जाते हैं कि हमारा जीवन पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर है, किंतु इस पद में भजनकार ने यही याद दिलाया है कि मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं है, प्रभु की कृपा और अनुकंपा ही उसके जीवन को अर्थ प्रदान करती है। श्रोताओ, नवीन व्यवस्थान के प्रकाश में यदि 89वें भजन के उक्त पदों का पाठ किया जाए तो ये पद हमें प्रभु येसु ख्रीस्त की परम शक्ति का स्मरण दिलाते हैं, जो कब्र की चट्टान को तोड़कर मुर्दों में से पुनः जी उठे, जैसा कि उन्होंने कहा था। संत योहन रचित सुसमाचार के 2:19 पद में ईश पुत्र येसु ख्रीस्त के शब्दों को हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। अस्तु श्रोताओ, 89वें भजन के रचयिता ने हम सबको यही याद दिलाया है कि सभी मनुष्य, भले ही उनके पास अपार संपत्ति, सांसारिक धन दौलत ही क्यों न हो, सबके सब नश्वर हैं। सबके जीवन में दुख की घड़ियों का आना अवश्यम भावी है, चाहे राजा हो या रंक, चाहे अमीर हो या गरीब, बलवान हो या कमजोर, सभी मनुष्यों को अनिवार्य रूप से मृत्यु का सामना करना है। इसीलिए जब तक जीवन है, मनुष्य भले कर्म करे, बुराई से दूर रहे, अपने दायित्वों का भली प्रकार निर्वाह करे और सब कुछ के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देता रहे।
तुझको दूंगा निष्ठावान हृदय के साथ, धन्यवाद प्रभु तुझको।